ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार्दिव्यध्वनियो लोकहितवमाडिदे मूरु लोकदल्लि यार्कीर्तिव्याप्तवागिदे ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಸಂಸಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಪನೆ ಭಾವೋಂಕೆ ಅನುಸಾರ ಏಕೇಂದ್ರಿ ಸೇ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿ ತಕ್ ಕೆ ಪರ್ಯಾಯೋಂ ಕೋ ಪಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಬ್ ವಹ ಏಕ್ ಸೀಡಿ ಚಡ್ತಾ ಹೈ तो आगे की पर्यायें दुर्लभता के रूप में उस प्राणी को प्राप्त होती जाती है। निगोद से निकलना कोई आसान बात नहीं है। अनादिकाल तो इसने वहां व्यतीत किया, फिर एकेंद्री पर्याय में आया। वह एकेंद्री पर्याय भी जो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक हैं, प्रत्येक वनस्पति ये दुर्लभ हैं। निगोद से निकलकर एकेंद्री बनना भी दुर्लभ। एकेंद्री बनने के बाद विकलत्रय की अवस्था को पाना भी दुर्लभ। द्विइंद्री बनना, तीनेंद्री बनना, चतुरेंद्री बनना, विकलत्रय भी बन गए तो असौध्नी पंचेंद्री बनना और दुर्लभ। असौध्नी पंचेंद्री पर्याय भी प्राप्त हो गई तो सौध्नी पंचेंद्री पर्याय में आना दुर्लभ। सौध्नी पंचेंद्री पर्याय में भी आ गए, उसमें देव बनना दुर्लभ या तिरंजपन बनना दुर्लभ। पहले तो तिरंज बनना दुर्लभ, फिर देव बनना दुर्लभ, फिर मनुष्य बनना दुर्लभ, नारकी बनना सुलभ। मनुष्य भी बन गए तो हम म्लेच्छखंड के मनुष्य बन गए, वो सुलभ। परंतु आर्यखंड का मनुष्य बनना दुर्लभ। कुवोग भूमि के मनुष्य बन गए वो सुलभ। सुबोग भूमि का मनुष्य बनना दुर्लभ। आर्यखंड का मनुष्य बन गए, आर्यखंड का मनुष्य बनना सुलभ। किंतु आर्य म्लेच्छ बनना सुलभ, आर्य खंड का वास्तविक आर्य बनना, आर्य मनुष्य बनना ये दुर्लभ है। और हम क्या बने हैं? वास्तविक आर्य खंड के मनुष्य के पर्याय में आए हैं। इसका मतलब एक चींटी शिखर पहाड़ चढ़ता 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 शिखर पर पहुंच ही गया। तीन इंद्रिय जीव है वहां तक पहुंच गया है, लेकिन गिर भी सकता है क्या? नहीं, हम यहां से पुनः गिरकर जहां से हमारी यात्रा शुरू हो गई थी वहीं जा सकते। जाना है क्या? नहीं जाना है। नहीं जाना है तो हम कहाँ आए हैं, कौन हैं, क्या कर सकते हैं, इसका चिंतन मनन प्रारंभ होना चाहिए। चिंतन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चिंतन जरूरी है। हम बहुत ऊंचाई पर आए हैं, हम उस शिखर पर हैं जहां से मोक्ष बिल्कुल पास में ही है। खड़े हो जाओ तो हाथ को लग जाएगा। हमें मोक्ष जाना है, ये हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। और मोक्ष का साधन धर्म है, धर्म को साथ में लेना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षित कहा है ना, कितने अच्छी तरह से समझ में आ गया है संडे के दिन। धर्म हमारी रक्षा निश्चित करता है, लेकिन उसकी रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। हम उसकी रक्षा करेंगे तो हमारी वह रक्षा निश्चित करेगा। इसलिए हम प्रारंभ करें अपनी यात्रा। क्या प्रारंभ करें? इसी दुर्लभ बातों को समझने के लिए ये स्वाध्याय चल रहा है। हम किस पर्याय में हैं? ये सारी पर्याय वर्णन में आ रहे हैं। हम कहाँ पर बैठे? इस सारी पुस्तक के सारे विषय को हम छानबीन करेंगे तो हम बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए ऐसा लगेगा। पर ये पता कहाँ है कि हम इतने महान पर्याय में आए हैं और इसकी महत्ता कुछ और है? ये मालूम ही नहीं है। हमको क्या मालूम है? खाना पीना सोना दौड़ना कहीं भी नहीं। ये खाने का समय नहीं, ये पीने का समय नहीं, इंद्रिय विषयों में रम जाने का भी समय नहीं। भोग भूमि में होते तो बात अलग थी, स्वर्ग में होते तो बात अलग थी। कुछ भी वहां पर उपदेश दो तो वहां पर बीज अंकुरित नहीं हो सकता। जहां पर बीज अंकुरित हो सकता है वहां पर हमें बहुत विचारक बनना पड़ेगा। ये मनुष्य पर्याय रत्न है, रत्न रत्न पर्याय भी रत्न है और जो पाना है आपको वो भी रत्न है। धर्म रत्न है, सम्यक दर्शन रत्न है, सम्यक ज्ञान रत्न है, सम्यक चारित्र सदाचार यह रत्न है। रत्न को पाना है। हम रत्न हैं, हम रत्न है तो मतलब कौन? रत्न को बेचने वाले क्या कहलाते हैं? जवाहरी, जवेरी, जोहरी। हम जोहरी हैं, हमारे पास जवाहरात का ही काम होना चाहिए। हमारे पास वास्तविक सुख के रत्न होने चाहिए और वो बिकने चाहिए। वास्तविक सुख के रत्न तो तीन हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये अपने पास होना चाहिए और उनका होलसेल व्यापार भी चलना चाहिए। अभी तक हमने तीन रत्न को पास में रखा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, ये किस पर्याय में नहीं थे तीनों? किस पर्याय में नहीं थे? अनादि से हैं ये तो, ये तो बिना कमाए बिना व्यापार के ही आए हैं घर में। कांच तो कहीं भी गली में भी मिल जाएंगे, किंतु रत्न गली में पड़े हुए नहीं मिल सकते। एक बोतल फूट गया तो फेंक दिया जाता है, जब तक वो फूटा नहीं तब तक कीमत है, फूटने के बाद उसकी क्या कीमत, फेंक दिया जाता है। रत्न फूट गया तो फेंक दिया जाता है नहीं, संभाल के रखते हैं। ये दो टुकड़े और छोटे छोटे टुकड़े भी संभाल कर कलर्ड कागज में बंद करके पुड़िया में और तिजोरी में रख देते हैं, ये अभी नहीं कल काम आएगा, ये बिकेगा, छोटा सा कण भी बिकेगा। ऐसे रत्न की रक्षा हम करते हैं तो रत्न हमारी रक्षा करता है। जो रत्न का व्यापारी होता है वह रत्न ही उसकी रक्षा कर रहा है, उसकी जिंदगी ही रत्नों से चल रही है। अपने को बोतल नहीं बेचना है कांच के, बोतल बेचकर कितना कमाएंगे? नहीं, अपने को रत्न का व्यापारी बनना है। इसलिए बनना है कि हम बहुत शिखर पर बैठे हैं, जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर रहते हैं वो उतने ही ऊंचे व्यापारी भी होना चाहिए। जो नीचे रहते हैं उनके लिए शोभा देता है कि नीचे का व्यापार करे वो। देव अगर इस रत्न के धारी नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, देव हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नारकी इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्न के पालक नहीं हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत नीचे है। चारों गतियों का शिखर मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ है, अमूल्य है। इस अमूल्य मनुष्य पर्याय को सुधारने के लिए हमें सतत जिनवानी का स्वाध्याय चिंतन मनन करना आवश्यक है, तो हम चलते हैं। जन भेदों के साथ अवस्था स्वामित्व एवं गुणस्थान, कल बात चल रही थी, मनुष्य पांच स्थान पर रहते हैं। पांच स्थान पर कहां कहां? आर्यखंड में, म्लेच्छखंड में, भोग भूमि में, कुभोग भूमि में और सुभोग भूमि, कुभोग भूमि, आर्यखंड, म्लेच्छखंड, चार हो गए। अब आर्यखंड में भी दो जगह रहते हैं, विजयार्ध पर्वत में यानी विद्याधर मनुष्य और भूचर मनुष्य। मनुष्यों के रहने के ये पांच ही प्लेस हैं, और कहीं भी ढूंढो तीन लोक में मनुष्य पाया नहीं जाएगा। पांच स्थानों को ध्यान में रखना है। आर्यखंड में दो जगह रहते, कहां? विजयार्ध पर्वत पर और आर्यखंड में। विजयार्ध पर्वत भी आर्यखंड कहलाता है, लेकिन वो अलग ही अस्तित्व है उसका, विजयार्ध की श्रेणियों में और आर्यखंड में, भरत क्षेत्र में, म्लेच्छखंड में, कुभोग भूमि में और सुभोग भूमि में, ये पांच प्लेस हैं। परंतु त्रिरंश कितनी जगह रहते हैं? वो तो सभी जगह हैं, सब जगह व्याप्त। तीन लोक में जहां भी देखो वहां त्रिरंश पाए जाते हैं, त्रिरंश जीव। सिद्ध भगवान के पास भी पूछो तुम कौन रहता है तो तीन गति के जीव तो रहते ही नहीं, देव नहीं रहते, मनुष्य नहीं रहते और नारकी नहीं रहते, रहने का सौभाग्य नहीं है। शरीरधारी बनकर वहां तक शुद्धों तक पहुंचने का भाग्य ये शरीरधारी मनुष्य को नहीं है, तिरंज जाता है, आसानी से जाता है, इसलिए उसको तिरंज कहा। तिर्यक गति यानी टेढ़ी गति, जहां कहीं भी गति जिसकी होती है वो तिर्यक गति, सिद्ध भूमि पर चला जाता है। ये सूक्ष्म पंच स्थावर कायिक जीव, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये जो सूक्ष्म पर्याय वाले जीव हैं वो तीन लोक में ठसाठस सब जगह भरे हैं, यहां के वहां, और ये टिकते नहीं कहीं एक जगह, चलते रहते हैं, गमनशील रहते हैं हमेशा, और किसी से टकराते तक नहीं, इनका एक्सीडेंट संभव नहीं, तीन लोक में कहीं एक भी जीव एक्सीडेंट से मरेगा नहीं, कोई सामने से आ जाए तो भी नहीं मरेगा और नहीं भी आ जाए तो भी नहीं मरेगा, अकाल मृत्यु नहीं है उसको, क्योंकि वज्र पटल में से भी रास्ता उसको मिल जाता है, इतनी सूक्ष्म काया उसकी होती है। एक डायमंड है, डायमंड के भीतर से रास्ता निकाल लेता है, जीवित पार हो जाता है, जैसे खिड़की में से एक मच्छर निकल जाता है आसानी से, वैसे डायमंड में से भी वो सूक्ष्म एकेंद्री पंच स्थावर का एक जीव इस पार से उस पार चले जाते हैं। इतना सूक्ष्म शरीर, औदारिक शरीर इतना सूक्ष्म, हाँ औदारिक शरीर इतना सूक्ष्म, किंतु देवों का शरीर इससे भी ज्यादा सूक्ष्म, परम परम सूक्ष्मम, एक दूसरे से शरीर, पहला नंबर में औदारिक शरीर है, फिर वैक्रिक शरीर है, फिर तेजस शरीर है, फिर आहारक शरीर है, तेजस शरीर है और कार्मण शरीर है, ये पांच प्रकार के शरीर इतने सूक्ष्म होते गए हैं, उनकी परिणति सूक्ष्म सूक्ष्म अनंत गुणी सूक्ष्म है। एक वज्र पटल में से औदारिक शरीरधारी ये सूक्ष्म कायिक पंच स्थावर कायिक जीव आसानी से निकल जाता है, स्पर्श तक नहीं करेगा, वज्र का स्पर्श नहीं होगा उसको, तो खिड़की के समान है, वो कहता है मुझे रास्ता है, कोई भी मुझे बांध नहीं सकते, कोई भी मुझे बंधन में रख नहीं सकते, और मैं भी किसी को बंधन में नहीं रखता हूं, ये कहता है, मैं किसी को बंधन में नहीं रखता हूं और मुझे कोई बंधन में नहीं रख सकती, मुझे को ही नहीं मार सकता है और मैं भी किसी को मार नहीं सकती। कितना सूक्ष्म शरीर है, ऐसा सूक्ष्म हमको क्या नहीं मिला है? मिला है, अभी तो शरीर में 5 फुट की आत्मा है, जितना बड़ा शरीर उतनी ही बड़ी आत्मा भीतर है। यह आत्मा जब मरण करके, मान के चले कि हम तिरंच आयु का बंद करते हैं और हमको मरण के पश्चात सूक्ष्म पृथ्वी का एक या जल का एक जीव बनना है, उस पर्याय की ओर हम गमन करते, यह शरीर जब छूटता है आत्मा यहां से रवाना कर जाता है, रास्ते में कितना बड़ा रहता है, 5 फुट का रहेगा क्या अत्यंत सूक्ष्म बन जाएगा? नहीं, गलत है। यहां से छूटते समय और वहां पहुंचने तक जहां जन्म लेना है वहां तक तो यही आकार बना रहेगा, आकार यही पूर्व के आकार से ही जाएगा, जब वहां स्थान पर पहुंचेगा तो वह समेट लेगा अपने आकार को, और वहां पर तिरंच गति नाम कर्म का उदय होने पर आयु को लेकर के वह जीवन जिएगा, केवल उसकी आयु तो अंतर मुहूर्त है और उस शरीर में प्रवेश करते ही वह आत्मा अपने आकार को समेट कर उतना छोटा बन जाता है जितना उसको सूक्ष्म जीव का स्वरूप कहा गया है, उतना छोटा बन जाता है। फिर वहां से मरण कर यदि मनुष्य गति में आ रहा हो तो फिर किस आकार से आएगा? सूक्ष्म आकार से ही आएगा। वहां से यहां आया और पता ही नहीं चला कब आया। जीव गर्भ में कब आता है किसी को पता चलता है? पता नहीं चलता। उतना सूक्ष्म आता है और यहां आते ही शरीर उसका एक साथ बड़ा नहीं होता, पर होता है स्थूल, क्योंकि बादर पर्याय है, मनुष्य पर्याय। आत्मा का कोई ना कोई बड़ा आकार है, लेकिन कितना आकार है वह भी वो राई के दाने के बराबर छोटा है। जब वह मनुष्य बनने को आता है और मनुष्य बनना जहां स्थान है वहां जन्म लेने का स्थान, आते ही आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर लेता है और छोटा सा अपना गोल शरीर बना लेता है, और गोल शरीर वह मांस का खंड राई के दाने के बराबर रहता है। उसके पांच अंकुर निकलते, पांच उस गोल खंड में पांच अंकुर निकलते, एक बीच में निकलता है, एक उसके साइड में निकलते हैं, दो उसके साइड में निकलते हैं और दो नीचे निकलते हैं। यही हमारे हाथ पांव और सिर है, तैयार होता है। आते ही यहां पर तैयार होना शुरू, अंतर्मूर्त के भीतर यह तैयार होना प्रारंभ हो गया। विकास होने के लिए भले ही 9 माह लगते हैं, लेकिन तैयार होना प्रारंभ हो गया। कौन तैयार कर रहा है? आत्मा तो है ही अंदर, लेकिन इन इन शरीर की रचना, इस शरीर की रचना करने में किसका हाथ है? नाम कर्म का हाथ है। ये नाम कर्म अभी पकड़ में नहीं आया विज्ञानियों को, ये नाम कर्म पकड़ में नहीं आया। अगर नाम कर्म पकड़ में आ गया तो उस दिन विज्ञानियों को बहुत बड़ा आसान हो जाएगा मोक्ष जाना। कर्म अगर पकड़ में आ गए तो फिर किसी मशीन के माध्यम से आत्मा के भीतर रहने वाले कर्मों को चूस कर अलग कर सकते, खींच कर अलग कर सकते। ये किसी मशीन के माध्यम से पकड़ में आने वाले पुद्गल परमाणु है क्या? नहीं है। जीव शरीरधारी जीव ही पकड़ में नहीं आता मशीन के माध्यम से, इतने सूक्ष्म परिणति है। जिनेंद्र भगवान ने जो कर्म सहित जीव को कहा है, विग्रह गति के जीव को विषय बना ले कोई मशीन, नहीं हो सकता। बड़ा सूक्ष्म है विज्ञान, धर्म का विज्ञान इतना बड़ा सूक्ष्म है। इसलिए कहा है धर्म के विज्ञान को पढ़ने के बाद फिर कोई पढ़ने का विज्ञान बचता नहीं। धर्म के विज्ञान के खोज के बाद फिर खोज कोई दुनिया में बचता ही नहीं, उसका अंत हो गया। पर भौतिक विज्ञान वो अभी मंगलाचरण में है, अभी तो स्टार्टिंग में है। वो जितना खोज रहा है वो बहुत स्थूल है, अभी प्रारंभिक दशा है, कुछ भी नहीं खोजा। अभी तो एक बूंद में कितने पानी हैं के जीव हैं, एक बूंद में उसको भी 36,450 जीवों को खोजा है, इससे ज्यादा भी उसमें से निकल सकते कि नहीं? हाँ, असंख्यात निकल सकते। ये सब किसका विषय? ये सब धर्म का विषय। ये सब धर्म ने कैसे जाना? धर्म ने ही जाना है। धर्म क्या चीज है? हमारा सम्यक ज्ञान धर्म है, कहा है ना। सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है। केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है क्या मिथ्या ज्ञान है? सम्यक ज्ञान है। तो केवल ज्ञान धर्म है क्या नहीं जीव का? तो इस धर्म ने खोजा है। कितनी शक्ति है धर्म के पास? जो भौतिक विज्ञानी काम नहीं कर सकता वो धर्म विज्ञानी काम कर सकता है। हमारे पास जो केवल ज्ञान है वही धर्म है, और उस धर्म के माध्यम से, उस धर्म रूपी मशीन के माध्यम से हम सब कुछ पता लगा सकते हैं। और ऐसे बड़े विज्ञानी बनने की शक्ति पात्रता किसके पास नहीं है? सभी के पास है, हर भव्य जीव के पास है। भगवान ने कहा है वो जो निगोद में पड़ा है अनादिकाल से, अभी तक त्रस पर्याय में कहीं अन्य पर्याय में नहीं आया, उसके पास भी बड़े विज्ञानी बनने की शक्ति है। इसलिए किसी भी जीव को कम मत समझो, ये ऐसा है वैसा है ऐसा मत सोचो, वो कैसा है ये सोचो, लेकिन ऐसा है वैसा है ये मत सोच करके, निर्णय लेकर के मत बैठो। वो बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली है। अगर वो शक्ति को वो स्वयं प्रकट कर लेता है ना, तो फिर वह विज्ञानी कहलाएगा। निगोदी जीव के पास भी केवल ज्ञान है, वही धर्म वह भी प्रकट कर सकता है, पर उसका ज्ञान बहुत छोटा है। एक स्पर्शनेन्द्रिय है और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, अक्षर का अनंतवा अंश श्रुत ज्ञान उसके पास है, सोचने की विशेष कैपेसिटी नहीं है। ये ज्ञान की पर्याय, ये भी पर्याय। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जानने की जो शक्ति है दो ज्ञान के माध्यम से, वह बहुत छोटी है। ये छोटी भी पर्याय, और उस ज्ञान को वह विकसित करना चाहे तो पर्यायों को लांग कर हम जहां बैठे हैं आज वहां तक उसको आना पड़ेगा। हम जहां पर आए हैं वहां तक आना पड़ेगा। आने के बाद भी पंडाल में बैठना पड़ेगा, यहां कुछ धर्म की बातें सुननी पड़ेगी, श्रद्धान करनी पड़ेगी, सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा, उसकी साधना करनी पड़ेगी, फिर संयम भी धारण करना पड़ेगा, तप भी धारण करना पड़ेगा, फिर कर्मों की निर्जा करके उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा जो अनादिकाल से अपने भीतर छिपा हुआ है। छिपा है या कैसा, क्या कहें? अव्यक्त, अव्यक्त रूप से विद्यमान है। अव्यक्त का मतलब ये होता है वह पर्याय है नहीं, वो भी एक पर्याय है ना, केवल ज्ञान मति श्रुत ये भी पर्याय है और श्रुत ज्ञान भी पर्याय है। ये केवल ज्ञान रूपी पर्याय व्यक्त हो सकती है, योग्यता है, लेकिन उसकी कहीं अस्तित्व हो द्रव्य में, भीतर छिपके बैठा हो, ऐसा है क्या? नहीं, केवल ज्ञान कहीं छिपके नहीं बैठा। केवल ज्ञान पर्याय को व्यक्त करने की शक्ति उस जीव के पास है। हम सब लोगों के पास केवल ज्ञान की शक्ति है, शक्ति है, केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान की पर्याय नहीं। पर्याय कभी छिप करके बैठ नहीं सकता। सरोवर की लहरें सरोवर में कहीं गहराइयों में छिपके बैठते नहीं। पर्याय द्रव्य की परिणतियां हैं, सरोवर का पानी हिला तो तरंगे उठने लगी, एक 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 तरंगे उठने लगी, लेकिन ये तरंगे आई कहां से? तो पानी में शक्ति है। कैसी शक्ति है? एक एक पर्याय को व्यक्त करने की शक्ति है, और वो उस पानी से एक समय में एक ही पर्याय उत्पन्न होती है, दो पर्याय एक साथ प्रकट नहीं हो सकती। देखो वस्तु स्वरूप कैसा है, पानी कभी आपसे कभी आपने ऐसा देखा है कि अपने बर्तन में भोगनी में पानी रखो और हिला के देख लो, पर्याय एक एक उठती हैं कि डबल डबल उठ के आती है? अगर डबल उठ के आ जाए तो हम कह सकते हैं द्रव्य में बहुत सारी पर्याय छिपी रहती हैं, कभी दो उठती हैं और कभी तीन एक साथ आती हैं। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। एक द्रव्य में जो गुण हैं उस गुण को ही शक्ति कहा है। इस शक्ति की कुछ पर्याय होती हैं, मति ज्ञान भी पर्याय, श्रुत ज्ञान भी पर्याय, और फिर केवल ज्ञान भी एक पर्याय, लेकिन वो वर्तमान पर्याय नहीं है, वो अभिव्यक्त होने योग्य पर्याय है, भावी में अभिव्यक्त हो सकती है लेकिन कहीं भीतर नहीं है। अगर भीतर हो तो ये कहना पड़ेगा भीतर तो केवल ज्ञान और ऊपर ऊपर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ये ऐसा क्यों? और केवल ज्ञान तो अनंत शक्ति वाला कहलाता है और फिर ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो बहुत छोटे हैं। बड़ा पहलवान नीचे बैठा है और छोटे पहलवान दो उनके कंधे पर बैठे हैं और उनको उठा करके फेंकने की शक्ति नहीं, अनंत शक्ति होकर के केवल ज्ञान के पास, ऐसा कैसा? नहीं, केवल ज्ञान भीतर नहीं है। केवल ज्ञान की शक्ति को कुंठित करने वाले कर्म जरूर हैं, यानी हमारी शक्ति को कब्जा करने वाले कर्म अवश्य हैं। वो किस शक्ति को कब्जा कर रहे हैं? केवल ज्ञान की शक्ति को, अवधि ज्ञान की शक्ति को, मनः परि ज्ञान की शक्ति को। देखो ज्ञान की पर्याय आठ हैं, कोमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, को अवधि ज्ञान, सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, सुअवधि ज्ञान, मनः परि ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांच पर्याय हैं। इन पांच में से एक समय में एक ही पर्याय होती है। वर्तमान में हमारे पास कितने ज्ञान हैं? दो ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान एक काल में एक साथ होते हैं क्या? बोलो, ये दोनों अगर पर्याय हैं तो तत्वार सूत्र में कहते हैं ये दोनों पर्याय हैं। तो पर्याय हैं इसलिए मति पूर्वकम श्रुतम, श्रुत ज्ञान जो होगा वो मति पूर्वक होगा। मति ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होने के बाद भी वो होने के बाद ही श्रुत ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति होगी। एक काल में दो ज्ञान नहीं हो सकते, एक काल में एक ही ज्ञान होगा, कोई भी हो एक ही पर्याय होगी। ये पर्याय एक है, ये पर्याय आई कहां से? तो गुण से आई। गुण क्या चीज है? शक्ति का नाम गुण है। उस गुण को चाहे धर्म कहो, शक्ति कहो, निसर्ग कहो, एक ही बात है। आत्मा में अनंत गुण है, कम नहीं है, अनंत। उसमें एक ज्ञान गुण भी है जो वह जानने का काम करता है। एक बात और ध्यान में रखना है, आत्मा अनंत गुणों का धाम ऐसा कहा जाता है, अनंत गुणों का आधार द्रव्य कहा तो जाता है। क्या वे अनंत गुण सारे के सारे संवेदनशील रहते हैं? नहीं, उन अनंत गुणों में से दो गुणों को अलग करो, ज्ञान और दर्शन। दर्शन गुण यानी देखने की शक्ति, ज्ञान गुण यानी जानने की शक्ति। जानने और देखने की शक्ति को अलग कर दो तो बाकी सब गुणों को देख लो, उनमें कोई संवेदनशीलता नहीं रहेगी, वे सब गुण अचेतन माने जाएंगे, अचेतन गुण हैं, उनमें चैतन्यता नहीं है। वो शक्तियां जरूर हैं लेकिन उनमें जानने की शक्ति नहीं है, इसलिए अचेतन है। देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए अचेतन है। वर्तमान में कोई भी सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है ना, सम्यक तो को ये गुण है, सम्यक तो गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, ज्ञान भी गुण है और उसके आजू बाजू में सम्यक दर्शन और चारित्र दोनों गुण हैं। इसमें चैतन्य गुण कौन है? ज्ञान एक ही है, सम्यक दर्शन अचेतन गुण है। ये समझ में नहीं आएगा ये क्या बोला जा रहा है, लेकिन है ऐसी ही बात। यदि आप सम्यक दर्शन को चैतन्य गुण मानेंगे तो सम्यक दर्शन में भी जानने और देखने की शक्ति होना चाहिए, तो वो नहीं है। चारित्र को यदि जानने देखने की शक्ति हो तो चारित्र भी संवेदनशील रह सकता है, परंतु हमारा चारित्र गुण कुछ जानता नहीं, हमारा सम्यक दर्शन गुण कुछ नहीं जानता। जानने की शक्ति तो ज्ञान के पास है, ज्ञान गुण के पास है, ज्ञान गुण के पास है। और यह ज्ञान गुण सभी अनंत गुणों को जन्म देने की शक्ति रखने वाला गुण कहलाता है। सम्यक दर्शन को किसने पैदा किया? ज्ञान ने ही पैदा किया है। जब वस्तु स्वरूप को समीचीन जाना, जानने के बाद श्रद्धान किया, जानने का कार्य और श्रद्धान करने का कार्य किसने किया? ज्ञान ने किया। तो ज्ञान ही सम्यक्त्व का उत्पादक है, किंतु खुद ज्ञान, स्वयं ज्ञान, यह सम्यक ज्ञान के रूप में पहले प्रकट क्यों नहीं हुआ? पहला सम्यक दर्शन प्रकट होता है, फिर बाद में सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा कहा जाता है ना? ऐसा क्यों? सम्यक दर्शन तो पहला प्रकट हो रहा है और सम्यक ज्ञान बाद में। हाँ, श्रद्धान करने वाला कौन? जीव। उसमें श्रद्धान करने का काम, जानने का काम, श्रद्धान को जानने का काम कौन कर रहा है? ज्ञान ही कर रहा है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आत्मा भी उस अपेक्षा से अचेतन है। जैन धर्म कहीं एकांतवादी नहीं है, अनेकांतवादी है। जीव एकांत से चेतनवान ही है, ऐसा कथन कहीं भी नहीं है। कथनचित आत्मा चेतन भी है, कथनचित आत्मा अचेतन भी है। अब यहाँ पर अपेक्षाएं हैं, समीचीन अपेक्षा को घटित करके विचार करना चाहिए। आत्मा चेतन ही है, ठीक है, ये भी गलत नहीं, सम्यक एकांत है। किसके अपेक्षा से? ज्ञान गुण की अपेक्षा से ही वह चेतन है। आत्मा चेतन ही है, समीचीन एकांत, सम्यक एकांत है ये, ज्ञान गुण की अपेक्षा से बोला जा रहा है, ये समझ लेना चाहिए। दर्शन गुण की अपेक्षा से कहा जा रहा है, ये समझ लेना चाहिए। आत्मा अचेतन है, ठीक, आत्मा अचेतन है, अचेतन गुणों की अपेक्षा से अचेतन है। तो चेतन अचेतन दोनों कैसे एक साथ? तो दोनों एक साथ ही तो, एक साथ होना ही तो अनेकांत है। दोनों का अस्तित्व एक साथ पाया जाना ही तो अनेकांत है। और चेतन गुण की गुण की संख्या अधिक है क्या अचेतन गुणों की संख्या अधिक? अचेतन गुणों की संख्या अधिक है, वे तो अनंत है। ये दो ही हैं, ज्ञान और दर्शन, और इस संपूर्ण आत्मा में व्याप्त है। ऐसा नहीं कि आत्मा के किसी कोने में ज्ञान और दर्शन रहते हैं और बाकी सब अचेतन, आत्मा का प्रदेश अन्य क्षेत्र अचेतन रूप रहता है, ऐसा भी नहीं। आत्मा संपूर्ण अखंड, एक प्रदेश भी खाली नहीं चेतनता से, संपूर्ण प्रदेशों में आत्मा चेतन है। परंतु उस आत्मा के भीतर रहने वाले जो अन्य गुण हैं वे कुछ नहीं जानते, इसलिए अचेतन है। वे स्वयं कुछ नहीं जानते, इसलिए अचेतन है। जैसे आप अपने मकान में रहते हैं, उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आप अपने मकान में रहते, ये मकान किसका पूछा जाए आप क्या कहते हैं, ये हमारा, तो आपका अस्तित्व तो कहां तक है? पूरे मकान के बराबर क्या, छत को छोड़कर? आपका स्वामित्व तो कहां तक है? उस मकान का एक एक परमाणु भी आपका है, आप उसके मालिक हैं। और कोई भी एक किनारा तोड़ देता है तो आपको विकल्प होता है, कांटा चुभने जैसा दर्द होता है, दर्द होता है कि नहीं? क्या आपको चुभ रहा है? क्या नहीं है? मकान के किसी ईंट को निकाला जा रहा है तो आपको दर्द होता है? क्यों हो रहा है? मकान अचेतन और चेतन को दर्द हो रहा है, क्यों होता है? वो आपका गुण है, ईंट भी आपका गुण बन गया है, ईंट भी आपका गुण बन गया है। आप कहते हैं वो ईंट भी मेरी, मेरी ईंट को तुम निकाल रहे हो, तो दर्द किसको हो रहा है? ज्ञान को हो रहा है, आत्मा को हो रहा है। मकान अचेतन है फिर भी उसका जो मालिक है एक है, नहीं तो दो हैं, दो हैं ना, गलती से एक निकला, उसमें दो रहते हैं, दो रहते हैं, एक ज्ञान है और एक दर्शन। पति ज्ञान है और पत्नी दर्शन, और दोनों को दर्द होता है। पत्नी कुछ नहीं कर सकती किसी को, अगर कोई ईंट निकाल रहा है तो देख लेती है और पति को जाकर के कहती है, हाँ? वो केवल देखने का काम करती है, लड़ने का काम जाकर के भीतर कहती है बाहर कोई आया है और ईंट ही खोद रहा है हमारे मकान का, कौन है? सारी चिंता करने वाला कौन? ज्ञान। रागद्वेषी ज्ञान बनता है, ज्ञान रागद्वेषी बनता है, दर्शन रागद्वेषी नहीं बनता। संसारी जीव को संसार निर्मिति के लिए, संसार के निर्माण के लिए, संसार की उत्पत्ति के लिए कारण दर्शन नहीं है, ज्ञान कारण है। कैसा ज्ञान? जो राग सहित ज्ञान है वो संसार की उत्पत्ति में कारण है। ज्ञान जानता है, लेकिन ज्ञान यदि जानता हुआ रागी बनता है तो अज्ञान में ढल जाता है। ज्ञान की वह शक्ति जो जानते समय राग पर्याय को धारण कर ले, वैभाविक परिणति को धारण कर ले, तो उस शक्ति का नाम ही तो अज्ञान है। वह शक्ति स्वभाव में भी हो सकती है और विभाव में भी हो सकती है। जो शक्ति विभाव में ढल गई उसका नाम अज्ञान, और जो शक्ति स्वभाव में आ गई उसका नाम ज्ञान। अज्ञान का अर्थ ये नहीं कि ज्ञान का अभाव, ज्ञान का विनाश, ऐसा नहीं, ज्ञान का सद्भाव किंतु विपरीत परिणमन, विभाव परिणमन। ये विभाव परिणति अनादि शांत है और ज्ञान परिणति स्वभाव परिणति सादी अनंत है। एक अनादि शांत है और एक सादी अनंत है। ज्ञान जब स्वभाव में आ गया तब उसी को हम वीतराग कहने लगे। वीतराग ज्ञान कौन? जो स्वभाव में आ चुका है वो वीतराग। और विभाव कौन? जो अपने स्वभाव को खो दिया वो रागी ज्ञान। रागी ज्ञान को अज्ञान कहा और वीतरागी ज्ञान को ज्ञान कहा। ये वीतरागी ज्ञान ये भी पर्याय है। ज्ञान की वीतराग स्वभाव अवस्था भी पर्याय है और विभाव अवस्था भी पर्याय है, किंतु जानना देखना, जानना देखना, ये जो शक्ति है इसको ज्ञान गुण कहा है। ये सामान्य ज्ञान गुण है, सामान्य है। इसको न तो रागी कहना चाहिए न वीतरागी कहना चाहिए। शक्ति मात्र को हम न रागी कह सकते हैं न वीतरागी कह सकते हैं। यह शक्ति जब विभाव परिणति में जाएगी तब उसको अज्ञान नाम पड़ता है। जब वीतराग स्वभाव परिणति में आ जाएगी तब उसको सम्यक ज्ञान नाम पड़ता है। स्वभाव ज्ञान चेतन है, स्वभाव ज्ञान की पर्याय है। विभाव भी पर्याय, स्वभाव भी पर्याय, ये दोनों पर्याय। स्वभाव पर्याय को वीतराग पर्याय कहते हैं और विभाव पर्याय को राग पर्याय कहते हैं या अज्ञान पर्याय कहते हैं। दो नाम दे सकते हैं, विभाव अज्ञान, तीसरा नाम है विभाव अज्ञान और सराग पर्याय। ज्ञान की सराग पर्याय ही अज्ञान पर्याय, ज्ञान की वीतराग पर्याय ही स्वभाव पर्याय। शक्ति शक्ति मात्र है। यह शक्ति जब स्वभाव में आएगी विभाव से तो उस पर्याय को छोड़कर इस पर्याय पर आती है। परंतु ऐसा विचार करना नहीं पड़ेगा कि अनादिकाल से हम स्वभाव पर्याय में ही थे, हम शुद्ध थे, या शुद्धत्व कहीं छिपा हुआ है, स्वभाव पर्याय कहीं छिपी हुई है, ऐसा नहीं। स्वभाव को यदि पर्याय कहना चाहते हैं तो छिपती है ऐसा कहना गलत हो जाएगा। स्वभाव छिपती नहीं, शक्ति हमारी छिप जाती है। कैसी शक्ति छिप जाती है? विभाव में आने पर स्वभाव नहीं, स्वभाव में आने पर विभाव नहीं, ये ऐसा होता है। किंतु वह शक्ति मात्र क्या चीज है? शक्ति ही ज्ञान है। उस ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहा, जो जानने का काम करता है। केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तब भी जानने का काम करता है और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की अवस्था में रहा तब भी जानने देखने का काम करता है। तो ये चैतन्य परिणति पकड़ में आनी चाहिए। ये पकड़ में आ गई तो हम साधना कर सकेंगे, कुछ कर सकेंगे, कुछ सोच सकेंगे, कुछ विचार भी हो सकेगा कि हम कौन हैं। हम विभाव परिणति वाले ज्ञान वाले हैं, विभाव परिणति में ढला हुआ ज्ञान वाले हैं। स्वभाव परिणति का ज्ञान और उसकी पर्याय कौन सी है? ज्ञान का स्वभाव क्या है? उसकी शुद्धता। तो उसकी शुद्धता कब प्रकट होती है? समस्त ज्ञानावरणी कर्म को नष्ट करने के बाद, जिसमें मति श्रुत अवधि ज्ञानावरणी मना परे ज्ञानावरणी केवल ज्ञानावरणी कोई आवरणी कर्म ना हो। आवरणी कर्म किसका घात कर रहा है? ज्ञान गुण का नहीं, ज्ञान शक्ति का। ज्ञान की शक्ति को कुंठित कर रहा है। हमारी शक्ति इतनी कुंठित हो गई है कि हमारे पास पांचों ओर से आकर के आक्रमण हो रहा है। मति ज्ञानावरणी कर्म, श्रुत ज्ञानावरणी कर्म, ये पांच ज्ञानावरणी कर्म आकर के आक्रमित कर रहे हैं। तो शक्ति पांच तरह से कुंठित हो रही है। और इस आक्रामक शक्ति को हमें जीतना है, आक्रामक शक्ति से लड़ना है। तो आक्रामक शक्ति कौन है? ज्ञानावरणी कर्म, वो पांच ओर से आकर के हमें आक्रमण कर रहा है। तो इससे कैसे लड़े, इससे कैसे झगड़े? तो इससे मत झगड़ो, ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो वैसे ही आ रहा है, इसके पास उतनी शक्ति नहीं है। जो इससे शक्तिशाली है उससे लड़ो। किससे? हाँ? आ गया, मोह से लड़ो, मोह से, मोह से, मोह से लड़ करके मोह को हरा दिया। तो मोह गया तो ज्ञान वीतराग बना क्या? रागी रहा, वीतराग बना। और वीतराग आत्मा के पास ज्ञानावरणी कर्म आ नहीं सकते। तो हमारे ज्ञान में प्रहार करने वाला ज्ञानावरणी कर्म है या मोहनी कर्म है? मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म सभी कर्मों का राजा है, सभी कर्मों का राजा है। इस राजा को जीत लो तो बाकी तो यूं ही जीते जाएंगे। धर्म करो, धर्म करो, धर्म पुरुषार्थ करो, धर्म पुरुषार्थ कहां करोगे? स्थान तो मालूम हो, कुलाड़े से मारो, कुलाड़े से मारो। अरे कहां मारूं ये तो बताओ पहले। स्थान ही पता नहीं है धर्म करने का। धर्म कहां करना है? धर्म दो पर ही किया जाता है, दर्शन मोहनी पर और चारित्र मोहनी पर। प्रहार करना करने का नाम धर्म है। और ये धर्म जिसके जीवन में आ गया उसको केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हो जाएगी। ज्ञानावरणी कर्म को नष्ट मत करो, उसको पड़े रहने दो। पर किसको पुरुषार्थ पूर्वक नष्ट करो? मोहनी कर्म को पुरुषार्थ पूर्वक नष्ट करो। ये सिद्धांत है, ये रास्ता है। पर यही मालूम नहीं हमको कि मोहनी कर्म को जीता जाता है। हम अपने शास्त्र से प्रहार तो कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं? हम चाहते हैं ज्ञानावरणी पर प्रहार कर दें और मोही बन के बैठा है। मोही जीव ज्ञानावरणी पर प्रहार करेगा क्या? ज्ञानावरणी से स्वयं प्रहारित हो जाएगा? हाँ, हम मोही बनते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म हमारे ऊपर प्रहार करता है। मोहनी कर्म ऑर्डर देता है, जाओ ये मोही बन चुका है, मेरे अधीन है, इसके पास शक्ति नहीं है, ये आत्मा कमजोर है, और आ जाओ इस पर प्रहार करो। तो पांच लोग आकर के प्रहार करते हैं, मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मनःपरी ज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी, 5 ओर से आकर के आत्मा को जकड़ लेते हैं और तब हमारी ज्ञान की शक्ति इतनी कुंठित हो जाती है, इतनी कुंठित हो जाती है कि हमारे पास जरा भी विचार करने की शक्ति नहीं रहती। जब हम निगोदी होते हैं, निगोदी जीव को 5 प्रकार के कर्म का बंध है, निगोदी जीव को भी 5 प्रकार का, मति, श्रोत, अवधि, मनःपरी, ज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी, क्या निगोदी जीव को बंध नहीं हो रहे? तो किससे हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं? मोहनी कर्म से। उसको अनंत अनुबंधी कषाय का उदय है, अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय करने की शक्ति उस एकेंद्री जीव के पास भी है। और किस ज्ञान के माध्यम से वह इन कषायों को करता है, किस ज्ञान के माध्यम से? कुमति, कुश्रुत, दो ज्ञान है, कुश्रुत के माध्यम से बंद होता है। मति के माध्यम से इतना बंद नहीं होता जितने कुश्रुत के माध्यम से बंद होता है। और इससे पूर्व दर्शन होता है, दर्शन तो निर्विकार है। जानने से पहले हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, फिर जानना प्रारंभ होता है। जानते समय हमारे पास, देखते समय हमारे पास राग द्वेष नहीं रहता। हमारे पास एक पदार्थ है, आपको यूं दिखा दिया तो आपने देखते समय राग द्वेष किया क्या? देखने के बाद राग द्वेष हुआ। महाराज जी ने ऐसा कुछ किया तो वो क्या है, पहला विचार किया, ये मति ज्ञान हुआ। मति ज्ञान भी राग द्वेष नहीं करता, ये क्या है समझने की चेष्टा करता है। हाँ, ये यही है अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, वस्तु का निर्णय हो जाता है। निर्णय के पश्चात ये ऐसा क्यों, फिर ये श्रुत ज्ञान आ गया अपनी भूमिका निभाने के लिए। उसी को क्यों दिखाया, हमको तो पुस्तक दिखाना चाहिए था, उन्हें दूसरे दिखाया तो ये राग द्वेष करने लगता है। जो चाहिए वो नहीं है तो राग द्वेष करेगा। श्रुत ज्ञान बहुत गड़बड़ है, सबका श्रुत ज्ञान गड़बड़ करता है। आटो कर्मों को बंद में कारण श्रुत ज्ञान है। मोही कौन होता है? श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान मोही है। और श्रुत ज्ञान को मोही होने के लिए भूमिका का निर्वाह करके सौंपने वाले ये मति ज्ञान और दर्शन गुण की शक्ति। दर्शन गुण देख लेता है, मति ज्ञान उस देखे हुए वस्तु का निर्णय करके श्रुत ज्ञान को सौंप देता है। हमने तो सौंप दिया, तुमको क्या करना है, तुम देखो, उसका काम हो गया, उसका काम हो गया। पर श्रुत ज्ञान अब कहता है, हाँ ठीक है, ऐसा है क्या? मति ज्ञान से कहता, ऐसा है क्या, ये ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने निर्णय ले लिया, अवग्रह, यह अवाय, धारणा तक ला करके सौंप रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये ले लो, लेकिन मैं राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं तो सौंपने का काम करता हूं, मैं तो पोस्टमैन हूं, पत्र में क्या लिखा है, कौन मरा है, मुझे सुख दुख से कोई मतलब नहीं। वो जिसका पत्र है वही खोल के पड़ेगा और रोएगा। तो श्रुत ज्ञान मतलब रखता है, उसको सब चाहिए, चाह, ये आह और चाह, ये दोनों किस ज्ञान में है, श्रुत ज्ञान में। श्रुत ज्ञान बहुत गड़बड़ है। आचार्य जी ने कहा, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल, चुन चुन इनमें उचित को, अनुचित मत चुन भूल, समय सार का सार है, निज बिन पर सब धूल। कितना अच्छा कहा, दो पद्य में करोड़ों ग्रंथों का सार आ गया। अगर ये समझ में आ गया, ज्ञान ही दुख का मूल है और इसको संभालना है, यही राग द्वेष करता है, ज्ञान की परिणति पकड़ में आ गई, ज्ञान को चुप बिठाने का, वीतराग बना करके बिठाने की कला अगर आपके पास आ गई तो निर्वाण की प्राप्ति कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं। संभालो, किसको संभालो? अपने को संभालो, अपने आप को संभालो। ये जो जिंदगी में दुख की घड़ियां आ रही हैं वे अपने कारण से आ रही हैं। हमारा ज्ञान भटक गया है, हमारा श्रुत ज्ञान गड़बड़ कर रहा है, इसके वजह से हम दुखी हो रहे हैं। ये दुख के दिन, ये सुख के दिन बार बार क्यों आते? इसका मूल कारण, मूल अपराध अपना ही है, अपने ज्ञान का है। जानने की शक्ति तो है लेकिन इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। पेट्रोल मिल तो गया है लेकिन पेट्रोल से हम गाड़ी में डालकर बहुत यात्रा भी कर सकते, आनंद लुटा सकते, लेकिन अपने ही ऊपर डाल करके आग लगा रहे तो पेट्रोल क्या करेगा? गलती हमारी है। पेट्रोल हमें जला भी सकता है और हमें आनंद भी प्रदान कर सकता है। यदि मैं गाड़ी में डाल करके चलाओ तो आनंद आएगा और ऊपर डालो और एक चिंगारी दे दो उसको, ये चिंगारी क्या है? पेट्रोल तो शक्ति कहलाई, जलाने की उसमें शक्ति है और आनंद प्रदान करने की भी शक्ति है, किंतु एक चिंगारी उसको मिल गई तो दुरुपयोग होगा, और चिंगारी से बचा करके उसका उपयोग करते हैं तो सदुपयोग होगा। दोनों हो सकता है कि नहीं? शक्ति तो है उसके पास, आनंद देने की भी शक्ति है और विनाशक शक्ति भी है, पर चिंगारी उससे कितना बचाते हैं, अब कितना सावधान रहते हैं। आसपास में कहीं माचिस बॉक्स तक नहीं रखते, दूर रखते पेट्रोल से, वहां तो रखते हैं लेकिन यहां क्यों नहीं रखते? ऐसा ये मोह चिंगारी है, चिंगारी। मोह से दूर रहो, ज्ञान को, ज्ञान की शक्ति को मोह से दूर रखो, मोह को दूर रखो और ज्ञान, ज्ञान की शक्ति को दूर रखो, और ऐसा दूर रखने की कला आ गई तो फिर निर्वाण दूर नहीं है, मोक्ष दूर नहीं है। मोक्ष उसी का नाम है, अपनी शक्ति का सदुपयोग करने का नाम ही मोक्ष है। आपके ज्ञान की शक्ति के पास अगर मोह आ नहीं सका, छू नहीं सका, तो आप तो अरहंत भगवान हैं, आप स्वयं अरहंत हैं, आप अरहंत हैं, कौन मना करता है अरहंत नहीं है? सभी अरहंत कहेंगे, हम किसकी वंदना करते, मोही की या मोह रहित की? मोह रहित की। पंच परमेष्टि की ही हम वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि वो मोह से रहित है। हमसे, संसारी प्राणियों से ज्यादा विशेष उनमें क्या है? मोह नहीं है, इसलिए वंदना करते हैं। मोह असयम है और निर्मोहता संयम है। हम उनकी वंदना करते हैं जो चिंगारी नहीं लगा रहा है अपने पेट्रोल से। और हम उनकी वंदना नहीं करते जो अपने पेट्रोल से चिंगारी लगा रहा है। क्यों नहीं करते? वो तो पागल है, पेट्रोल इतना सारा ला करके रखा, खरीद करके रखा और उसको आग का संयोग दे रहा है और धुआं उठ रहा है ऊपर। उस धुएं को ही देख करके आप दौड़ के आए कि ये हो क्या रहा है। आकर के देखा आकर के देखा तो ये तो धुआं उठ रहा है, ये क्या जल रहा है? पूछा तो पता चला कि पेट्रोल जला रहे हैं। क्यों जल रहा है ये पेट्रोल? जलाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्यों मालूम, क्या मालूम कि जल क्यों रहा है ये? चिंगारी कहां से आती, कैसे लग जाती, स्पर्श कैसा होता, ज्ञान में ही नहीं आता। कैसे आग लग गई पता ही नहीं घर में, फिर चिंतक तो बनना पड़ता है ना कि शॉर्टकट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, या कहीं कुछ चिंगारी अपने ही माध्यम से कुछ हुआ। खोजबीन तो करना पड़ता है ना, तो जब नुकसान होता है तब खोज प्रारंभ होती है, जब नुकसान हो जाता है तब खोज प्रारंभ होती है। हमारा बहुत बड़ा नुकसान होना चाहिए तब खोज प्रारंभ होती है। वैराग्य कब होता है? जब सारा पेट्रोल जल जाए तो वैराग्य होता है। पेट्रोल टंकी ही चल गई और उस पर जीवन डिपेंड था और सारी संपत्ति जल गई, तब हमारे लिए ध्यान आता है ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्यों हो गया, संसार में कुछ नहीं है, सबको छोड़ के जाना अच्छा है। वैराग्य कब होता है? जब लक्ष्मी नहीं आती है पास में तो भगवान याद आते हैं, वैराग्य आता है, महाराज अब तो दीक्षा दे दो, साधु शरणम पवज झामी। अभी नुकसान नहीं हो रहा है इसलिए आप बैठे हैं, अभी तो लक्ष्मी की कृपा है इसलिए बैठे, अभी तो पेट्रोल को आग नहीं लगी। टाइम हो गया जिनवानी, क्या आर्यखंड में कौन से? नहीं नहीं, आर्यखंड तो पूरा विश्व आर्यखंड है, और विश्व दक्षिण ध्रुव के उस पार और दक्षिण उत्तर ध्रुव के उस पार जो देश हैं वे मिलेच्छ खंड है।
निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो मा जग में, तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरु मा, अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।